नमस्कार श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रोताओं, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से यूहन्ना रचित सुसमाचार का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हो और आत्मिक ज्ञान प्राप्त करें।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी प्रभु में रह करके कुशल पूर्वक हैं और आज भी परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, इससे पहले कि हम आज फिर अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब परमेश्वर की निकटता में आए और आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगे और प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सब के जीवन में फिर से एक बार दिया है। इतना ही नहीं, आपने हमें जीवितों के बीच में जीवित रखा है, क्योंकि जब हम इस संसार में देखते हैं तो बहुत सारे लोग इस संसार को छोड़कर चले गए, लेकिन आपने हमें जीवन दिया है ताकि हम आपको धन्य कह सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से मनन चिंतन करना चाहते हैं, उसमें से सीखना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें से प्रत्येक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ की परिपूर्णता दीजिए। हम सबको एकाग्रतापन दीजिए ताकि जब हम आपके वचन को सुनते हैं तो आपका वचन हमारे हृदयों से बोलने और बातचीत करने पाए, हमारी जरूरतों को टटोलने पाए, ताकि प्रभु आपके वचन पर हम भरोसा कर सकें, आप पर भरोसा कर सकें और उस वचन के अनुसार हम अपने जीवन को चला सकें। हमारी प्रार्थना है उन भाई बहनों के लिए भी जो अपने जीवन से दुखी और निराश हैं, चिंतित और परेशानी हालत में हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन को समाप्त करना चाहते हैं। वे सोचते हैं कि उनसे कोई प्रेम नहीं करता है, लेकिन प्रभु आप उनसे प्रेम करते हैं, इसलिए आप उनसे भी बातचीत कीजिए ताकि आज की इस घड़ी में हर एक जन जो इस कार्यक्रम को सुनता है आपकी आशीषों को प्राप्त कर सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आज आप हमसे बातचीत करने जा रहे हैं, आप हमारी सहायता करने जा रहे हैं। प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, हम लोग देख रहे थे कि यीशु को बंदी बनाकर महायाजकों के समक्ष उपस्थित किया गया और फिर राज्यपाल पिलातुस के पास लाया गया। यद्यपि पिलातुस ने यीशु को निर्दोष पाया, उसने न्याय को भ्रष्ट करते हुए यीशु को मृत्यु दंड दे दिया और उन्हें एक तख्ती पर लिखकर दे दिया कि उसके क्रूस पर वह दोषारोपण ठोका जाए। मेरे मित्र, रोम ने संसार पर लगभग 1000 वर्ष तक राज्य किया और जहां जहां उन्होंने राज्य किया वहां वहां न्याय व्यवस्था, सुलभ मार्ग, सुरक्षा और शांति प्रदान करने की प्रतिज्ञा थी, परंतु शर्त यह थी कि मनुष्य का जीवन उनकी तानाशाही के अधीन रहेगा। उनके न्यायालयों में दोषी को दंड दिया जाता था तो निर्दोष को भी निष्पक्ष न्याय मिलता था, परंतु यहाँ हमें नियम विरोधी स्थिति देखने को मिलती है। वही रोम जो संसार में अपने न्याय के लिए पहचाना जाता था पूर्ण रूप से चूक गया। उनका एक देवता था जिसका नाम जेनस था और हर एक रोमी अधिकारी के कार्यालय में उसकी मूर्ति लगी रहती थी, तो इस बात का प्रतीक थी कि वे आगे और पीछे दोनों पक्षों को देखकर निर्णय लेंगे। परंतु पिलातुस, जिसने निश्चय ही दोनों पक्षों का अवलोकन किया और न्याय में चूक गया। और हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जनवरी महीने का नाम भी इसी देवता के कारण पड़ा है, क्योंकि जनवरी माह के पीछे विगत वर्ष को देखता है और आगे नए वर्ष को। हम आगे देखते हैं कि गुलगुता नामक पहाड़ी पर यीशु की मृत्यु। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसके 1-3 पद में हम पढ़ते हैं, इस पर पिलातुस ने यीशु को लेकर कोड़े लगवाए और सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रखा और उसे बैजने वस्त्र पहनाया और उसके पास आकर कहने लगे, हे यहूदियों के राजा प्रणाम, और उसे थप्पड़ मारे। मेरे मित्रों, यीशु यदि दोषी था तो उसे दंड दिया जाना था, और यदि वह निर्दोष था तो उसे मुक्त किया जाना था, परंतु कोड़े लगवाना न्याय विरोधी था। पिलातुस ने यहूदियों को शांत करने के लिए यीशु को कोड़े लगवाए। संभवतः वह चाहता था कि यीशु को कोड़े लगवा कर छोड़ दे। ऐसी स्थिति में रोमी सैनिक मनोरंजन का पूरा आनंद लेते थे। लिखा है कि उन्होंने उसे थप्पड़ भी मारे, अर्थात उसके साथ अत्यधिक निर्दयता का व्यवहार किया। ऐसी स्थिति में सैनिकों को छूट थी कि वे बंदी के साथ जैसा दुर्व्यवहार करना चाहें वे ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने उसकी आंखों पर पट्टी बांधी और एक एक करके वे उसे शक्ति से मारते तथा उसकी आंखों पर से पट्टी हटाते, और यदि वह अचेत न हो तो उससे पूछते कि किसने उसे मारा था। स्पष्ट है कि बंदी बता नहीं पाता था, अतः वे अपना खेल उस समय तक दोहराते रहते थे जब तक कि बंदी का चेहरा पहचानने योग्य न रहता। यहाँ पर यशाया नबी की पुस्तक 52 अध्याय उसके 14 पद की भविष्यवाणी पूरी होती है। लिखा है, बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा न जान पड़ता था, और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी न रह गई थी। मेरे मित्रों, इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि यीशु की स्थिति या परिस्थिति उस समय क्या थी। हम आगे पढ़ते हैं यूहन्ना 19 अध्याय के 4 और 5 पद में। तब पिलातुस ने फिर बाहर निकलकर लोगों से कहा, देखो मैं उसे तुम्हारे पास फिर बाहर लाता हूँ ताकि तुम जानो कि मैं कुछ भी दोष नहीं पाता। तब यीशु कांटों का मुकुट और बैजनी वस्त्र पहने हुए बाहर निकला और पिलातुस ने उनसे कहा, देखो यह पुरुष। उसका चेहरा वैसा नहीं दिखता था जैसा आप उसके चित्र में देखते हैं। देखो यह पुरुष, जी नहीं, पिलातुस गलत था। वह मात्र पुरुष ही नहीं, कहीं उससे भी अधिक था। वह परमेश्वर का पुत्र था, संसार का उद्धार करता था, मेरा और आपका उद्धार करता था। वह मुझे और आपको बचाने के लिए आया था, इस संसार को बचाने के लिए आया था। यूहन्ना ने अपना सुसमाचार इसलिए लिखा कि आप विश्वास करें कि यीशु ही मसीह है, परमेश्वर का पुत्र, और उसमें विश्वास करने के द्वारा अनंत जीवन पाएं। हम यूहन्ना 19 उसके 6 पद में पढ़ते हैं, तब महायाजकों और प्यादों ने उसे देखा तो चिल्लाकर कहा कि उसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही उसे लेकर क्रूस पर चढ़ाओ, क्योंकि मैं उसमें दोष नहीं पाता। मेरे प्रियो, संभवतः इस समय पिलातुस ने पानी का पात्र मंगवाकर अपने हाथ धोए। पानी उसके हाथ को तो धो सकता था, परंतु उसके विवेक से दोष को नहीं। कलिसिया का प्राचीन विश्वास का वचन कहता है, पेंतुस पिलातुस के राज्य में वह दुख उठाया। हम योना रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसके 7 से 9 पद में पढ़ते हैं, यहूदियों ने उसको उत्तर दिया कि हमारी भी व्यवस्था है, और उस व्यवस्था के अनुसार वह मारे जाने के योग्य है, क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बनाया। जब पिलातुस ने यह बात सुनी तो और भी डर गया, और फिर किले के भीतर गया और यीशु से कहा, तू कहाँ का है? परंतु यीशु ने उसे कुछ भी उत्तर न दिया। मेरे प्रियो, पिलातुस को संतोष नहीं हुआ, अतः वह उससे प्रश्न करने उसे भीतर ले गया। तब हम आगे पढ़ते हैं यूहन्ना 19 अध्याय उसके 10 और 11 पद में, पिलातुस ने उससे कहा, मुझसे क्यों नहीं बोलता? क्या तू नहीं जानता कि तुझे छोड़ देने का अधिकार मुझे है और तुझे क्रूस पर चढ़ाने का भी अधिकार मुझे है? यीशु ने उत्तर दिया कि यदि तुझे ऊपर से न दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार ना होता, इसलिए जिसने मुझे तेरे हाथ पकड़वाया है उसका पाप अधिक है। पाप और पाप के दंड अलग अलग है। जिन्होंने यीशु को पिलातुस के समक्ष प्रस्तुत किया उनका पाप पिलातुस से बड़ा था, क्योंकि वे पिलातुस से अधिक ज्योति में थे, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि पिलातुस का इसमें कोई भी दोष नहीं है, वह भी अपराधी था। हम यूहन्ना 19 उसके 12 पद में पढ़ते हैं, इससे पिलातुस ने उसे छोड़ देना चाहा, परंतु यहूदियों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, यदि तू इसको छोड़ देगा तो तेरी भक्ति कैसर की ओर नहीं, जो कोई अपने आप को राजा बनाता है वह कैसर का सामना करता है। मेरे प्रिय मित्र, पिलातुस ने उसे मुक्त करना चाहा क्योंकि वह उसमें विश्वास करता था, नहीं केवल इसलिए कि उसने यीशु में कोई दोष नहीं पाया। यीशु राजनेताओं की खींचतान में फंस गया था। यदि पिलातुस यीशु को छोड़ देता तो यहूदी अगुए सरकार से उसके अन्याय की शिकायत करते और उसकी कुर्सी को खतरा था। पिलातुस यह नहीं चाहता था। पद प्रतिष्ठा के लालसा परमेश्वर और न्याय को अनदेखा कर देती है। आज भी कई स्थानों में ऐसा होता है और जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं। यूहन्ना 19 उसके 13 पद में हम आगे पढ़ते हैं, ये बातें सुनकर पिलातुस यीशु को बाहर लाया और उस जगह एक चबूतरा था जो इब्रानी में गब्बता कहलाता है और न्याय आसन पर बैठा। गब्बता एक चबूतरा होता था जहां बैठकर रोमी सम्राट न्याय करता था। यह चबूतरा चलायमान भी होता था जो रोमी सम्राट के साथ साथ चलता था। हम यूहन्ना 19 उसके 14 और 15 पद में पढ़ते हैं, यह फसह की तैयारी का दिन था और छठे घंटे के लगभग था। तब उसने यहूदियों से कहा, देखो यही है तुम्हारा राजा। परंतु वे चिल्लाए कि ले जा उसे क्रूस पर चढ़ा। पिलातुस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़ाऊं? महायाजकों ने उत्तर दिया कि कैसर को छोड़ हमारा और कोई राजा नहीं। यहाँ यीशु के अधिकार को देखें। यहाँ वास्तव में यीशु अभियोग के अधीन नहीं है। यहाँ पिलातुस पर निर्णय लेने का बोझ है कि यीशु और कैसर के मध्य चुनाव करें। जनता का निर्णय स्पष्ट है, कैसर को छोड़ हमारा कोई भी राजा नहीं है। ऐसा ही एक दिन और आएगा जब उन्हें ख्रिस्त यीशु और ख्रिस्त विरोधी के बीच चुनाव करना पड़ेगा। मेरे मित्रों, हर एक मनुष्य को यीशु के बारे में चुनाव करना है। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 20 पद में यीशु ने कहा, जो मेरे साथ नहीं है वह मेरा विरोध में है। मसीह के विरुद्ध निर्णय लेने का अर्थ है कैसर के पास जाना। हम यूहन्ना 19 उसके 16 पद में पढ़ते हैं, तब उसने उसे उनके हाथ सौंप दिया ताकि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान की चर्चा करते करते हम उसे अप्रभावी बना देते हैं। यह इतिहास का सबसे अधिक कायरतापूर्ण कार्य था, परंतु यही हमारा उद्धार भी था। हमें यहाँ विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में इसे देखना है। परमेश्वर की ओर से क्रूस पश्चाताप था, अर्थात आपका और मेरा दया आसन या सिंहासन, जहां से परमेश्वर ने हमें दया प्रदान की। यह वह स्थान है जहां पवित्र एवं धर्मी परमेश्वर पापियों को बचाने उतरा। यहां न्याय आसन से बदलकर दया आसन बन गया कि हमें पाप के दंड की अपेक्षा दया दान मिले। मेरे मित्रों, मसीह यीशु ने हमारे अपराध अपने ऊपर उठा लिए और परमेश्वर का दंड शांत हुआ। यीशु के दृष्टिकोण से यह एक बलिदान था, एक आज्ञा पालन का कार्य था, जैसा पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को लिखता है कि वह क्रूस की मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा। वह परमेश्वर के लिए मनमोहक सुगंध वाला बलिदान था। वह हमारे पापों का बलिदान था। मेरे प्रियो, आपके और मेरे लिए वह प्रतिस्थापन था। पत्रस लिखता है, पहला पत्रस की पत्री 2 अध्याय उसके 24 पद में, वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। मेरे प्रियो, शैतान के लिए यह विजय एवं पराजय थी। उत्पत्ति 3 के अनुसार वह स्त्री के वंशज की एड़ी डसकर विजयी हुआ, परंतु उसका सिर कुचला गया, अतः वह पराजित भी हुआ। इब्रानियों में लिखा हुआ है 2 अध्याय उसके 14 पद में, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। मेरे प्रिय मित्र, सांसारिक परिप्रेक्ष्य में क्रूस एक निरशंस हत्या की अपेक्षा और कुछ नहीं था। संसार एक मनुष्य को देखता है और अन्याय होते देखता है। वे यीशु को क्रूस पर चढ़ाने ले चले और इस प्रकार भजन संहिता 94 उसके 20 और 21 की भविष्यवाणी पूरी होती है। क्या तेरे और दुष्टों के सिंहासन के बीच संधि होगी? जो कानून की आड़ में उत्पात मचाते हैं, वे धर्मी का प्राण लेने को दल बांधते हैं और निर्दोष को प्राण दंड देते हैं। हम यूहन्ना 19 अध्याय उसके 17 और 18 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, तब वे यीशु को ले गए और वह अपना क्रूस उठाए हुए उस स्थान तक बाहर गया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है और इब्रानी में गुलगुता। वहां उन्होंने उसे और उसके साथ और दो मनुष्यों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को इधर और एक को उधर, अर्थात एक को बाएं और दूसरे को दाएं, और बीच में यीशु को। मेरे मित्रों, यूहन्ना क्रूसीकरण स्थल का दृश्य व्यक्त करने में स्पष्ट नहीं है। जनरल गार्डन उस स्थान से संतुष्ट नहीं थे जो शहरपनाह के भीतर गुलगुता कहलाता है, अतः उन्होंने खोपड़ी के आकार का एक और स्थान दिखाया जो शहरपनाह के बाहर है। इस स्थान को गार्डन का कलवरी कहते हैं। मेरे विचार में यही यीशु के क्रूसीकरण का स्थान था। लय व्यवस्था की पुस्तक 4 अध्याय उसके 12 पद में स्पष्ट है कि पाप बलि का प्रत्येक अंश शिविर के बाहर एक स्वच्छ स्थान में ले जाया जाता था। यीशु ने अपने विषय पुराने नियम की प्रत्येक भविष्यवाणी पूरी की थी। इब्रानियों के पत्री में स्पष्ट कहा गया है कि हमारे प्रभु ने नगर द्वार के बाहर कष्ट उठाया था। इब्रानियों के पत्री 13 अध्याय उसके 12 पद में हम इसे पढ़ते हैं। तब हम आगे देखते हैं, यूहन्ना 19 अध्याय उसके 19 पद में लिखा है, और पिलातुस ने एक दोष पत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया और उसमें यह लिखा था, यीशु नासरी, यहूदियों का राजा। मित्रों, पूरा दोष पढ़ने के लिए चारों सुसमाचार वृत्तांतों में व्यक्त दोष को जोड़कर पढ़ना उचित होगा। हम यूहन्ना 19 उसके 20 से 22 पद में पढ़ते हैं, यह दोष पत्र बहुत यहूदियों ने पढ़ा क्योंकि वह स्थान जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था नगर के पास था, और पत्र इब्रानी और लतीनी और यूनानी में लिखा हुआ था। तब यहूदियों के महायाजकों ने पिलातुस से कहा, यहूदियों का राजा मत लिख, परंतु यह कि उसने कहा, मैं यहूदियों का राजा हूं। पिलातुस ने उत्तर दिया कि मैंने जो लिख दिया वह लिख दिया। इब्रानी धर्म की भाषा थी, यूनानी भाषा संस्कृति और ज्ञान की भाषा थी, और लतीनी भाषा व्यवस्था और न्याय की भाषा थी। इसका अर्थ यह हुआ कि यीशु संपूर्ण संसार के लिए मरा। यही सुसमाचार है जो सब जातियों में पहुंचाया जाना है। यूहन्ना सुसमाचार 19 अध्याय उसके 23 और 24 पद में हम पढ़ते हैं, जब सिपाही यीशु को क्रूस पर चढ़ा चुके तो उसके कपड़े लेकर 4 भाग किए, हर सिपाही के लिए एक भाग और एक कुर्ता भी लिया, परंतु कुर्ता बिन सियन ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था, इसलिए उन्होंने आपस में कहा, हम इसको ना फाड़ें परंतु इस पर चिट्ठी डालें कि वह किसका होगा। 24 पद में, यह इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो कि उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाले, सो सिपाहियों ने ऐसा ही किया। जब सैनिक यीशु को क्रूस पर चढ़ा चुके, किसी भी वृतांत में यीशु की मृत्यु का विवरण स्पष्ट नहीं है। क्रूस और क्रूसीकरण की कुछ बातें हमसे छिपी है। परमेश्वर ने स्वयं ही इस पर पर्दा डाला है। संपूर्ण क्षेत्र में अंधकार छा गया था, इसलिए मनुष्य सब कुछ नहीं देख पाए। सर्वप्रथम परमेश्वर हमें अपनी जिज्ञासा पूर्ति हेतु सब कुछ बताना नहीं चाहता है। दूसरी बात, वह पिता और पुत्र के मध्य विनिमय हो रहा था जो संसार के पापों के संबंध में था और हमारी समझ से परे था। हमारे लिए केवल वह उद्धार है जो मसीह की मृत्यु से प्राप्त है। हमें उसके क्षमा को विश्वास से ग्रहण करना है। मेरे मित्रों, इसी के द्वारा हम उस अंधकार से प्रकाश में प्रवेश करेंगे। यद्यपि रोमी सैनिक धर्मशास्त्र को नहीं जानते थे, परंतु वे उसकी भविष्यवाणी को अनजाने में ही पूरा कर रहे थे। हम भजन संहिता 22 उसके 18 पद में पढ़ते हैं, वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं, और यह भविष्यवाणी पूरी होती है। यूहन्ना 19 उसके 25 से 27 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, परंतु यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन मरियम, क्लोपास की पत्नी और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उस चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। यीशु अपनी माता मरियम को नारी कहकर पुकारता है। यह वही शब्द है जो वह यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 2 में अपनी माता के संबोधन में काम में लिया था, हे महिला। अब उसका समय आ गया था, वह मरेगा और फिर जी भी उठेगा, वह महिमान्वित होगा। अपनी माता से उसका संबंध समाप्त हो जाएगा, वह हम सबके लिए महिमा का प्रभु होगा। उसका पुनरुत्थान उसकी माता पर उंगली उठाने वालों को चुप कराएगा और उसका सम्मान स्थापित होगा। मेरे प्रियो, उसे भी एक विश्वासी की नाई मसीह को ग्रहण करना होगा। वह संसार के पापों के लिए मरने जा रहा है, परंतु वह अपने उत्तरदायित्व से मुंह नहीं मोड़ता है। प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसके 14 पद में मरियम भी शिष्यों के साथ ऊपरी कक्ष में प्रार्थना कर रही थी, परंतु इसके बाद उसका उल्लेख हमें नहीं मिलता है। यूहन्ना ने अंत तक उसकी देखरेख की, जैसी आज्ञा प्रभु ने उसे दी थी उसने वैसा ही किया। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसके 28 से 30 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। वहाँ एक सिरके से भरा हुआ बर्तन धरा था, सो उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। यूहन्ना यहाँ पुराने नियम के भविष्यवाणियों की पूर्ति के विषय विशेष रूप से उल्लेख करता है। उसके कुर्सीकरण में पुराने नियम की 28 भविष्यवाणियां पूरी हुई थी। मैं प्यासा हूँ, भजन संहिता 69 उसका 21 पद, पूरा हुआ, क्या पूरा हुआ? आपका और मेरा उद्धार पूरा हुआ। यूहन्ना 17 उसके 4 पद में वह स्वर्गीय पिता से कह रहा है, तूने मुझको जो काम करने को दिया था वह मैंने पूरा किया। हम आगे पढ़ते हैं यूहन्ना 19 उसके 31 से 37 पद में, और इसलिए कि वह तैयारी का दिन था, यहूदियों ने पिलातुस से विनती की कि उनकी टांगे तोड़ दी जाएं और वे उतारे जाएं, ताकि सप्त के दिन वे क्रूस पर न रहें, क्योंकि वह सप्त का दिन बड़ा दिन था। सो सिपाहियों ने आकर पहले की टांगे तोड़ी, तब दूसरे की भी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे। परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है तो उसकी टांगे न तोड़ी, परंतु सिपाहियों में से एक ने बर्छे से उसका पांजर भेदा और उसमें से तुरंत लोहू और पानी निकला। जिसने यह देखा उसी ने गवाही दी है, और उसकी गवाही सच्ची है, और वह जानता है कि सच कहता है कि तुम भी विश्वास करो। ये बातें इसलिए हुई कि पवित्र शास्त्र की यह बात पूरी हो कि उसकी कोई हड्डी तोड़ी न जाएगी। फिर एक और स्थान पर यह लिखा है कि जिसे उन्होंने भेदा है उस पर दृष्टि करेंगे। मेरे प्रियो, पहली भविष्यवाणी जो यूहन्ना कहता है कि पूरी हुई, वह भी भजन संहिता 34 उसके 20 पद की है। वह उसकी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक की भी टूटने नहीं देता। दूसरी भविष्यवाणी है जकरिया के पुस्तक 12 अध्याय उसके 10 पद से, जो अभी पूरी होनी बाकी है। तब वे तुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने वेधा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते और पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौठे के लिए करते हैं। जी हाँ, उन्होंने उसे वेध तो दिया, परंतु जब वह फिर आएगा तब वे उसे देखकर बहुत रोएंगे। मेरे मित्रों, हमारा मुक्तिदाता प्रभु यीशु हमारे लिए पाप बलि में स्वयं को अर्पित कर देता है कि हमारे पाप क्षमा किए जाएं और हम परमेश्वर के क्रोध के भागी ना हो, वरन दया पाकर अनंत जीवन में प्रवेश करें। परंतु निर्णय आपका और मेरा है कि हम किसे चुनते हैं। इस संसार में बहुत से लोग आते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, मर जाते हैं और चले जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह भी इस जगत में आज से 2010 साल पहले आए। उन्होंने अपने जीवन को हम पापियों के लिए क्रूस पर बलिदान कर दिया ताकि हम उसके द्वारा से उद्धार को प्राप्त करें। मेरे मित्रों, आज मुझे और आपको किसी प्रकार के बलि को चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर था स्वयं मनुष्य बनकर हमारे लिए बलि चढ़ गया ताकि हम उसके द्वारा उद्धार को प्राप्त करें। क्या आज आप उस प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं? क्या आप उसके बारे में जानते हैं? वह आपका मुक्तिदाता हो सकता है यदि आप उसे अपने जीवन में आने दें। आइए हम आज के इस वचन के प्रकाशन में अपने जीवन को जांचें, देखें कि आज मैं कहां पर हूं। क्या मैं उस भीड़ के समान तो नहीं जो उनके बीच में खड़ा होकर के चिल्ला रहा हूं कि इसे क्रूस पर चढ़ा, जबकि मैं जानता हूं कि वह निर्दोष है, निष्कलंक है, उसमें कोई भी पाप नहीं है। पिलातुस निर्णय लेने में असमर्थ था और वह भीड़ के साथ उस निर्णय में शामिल हुआ। लेकिन आज आप कहां हैं? आपके लिए मौका है कि आप प्रभु को पाएं। आपके लिए मौका है कि आप उसे त्याग दें। आप क्या करना चाहते हैं? मेरे मित्र, आज के इस अध्ययन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे और आप सबको एक सही निर्णय लेने में सहायता प्रदान करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
यीशु के नाम में शिफा है,
शिफा है, शिफा है, शिफा है।
यही कलाम में लिखा है,
लिखा है, लिखा है, लिखा है।
यीशु के नाम में शिफा है,
शिफा है।
यही कलाम में लिखा है,
लिखा है।
यीशु से शैतान हारा है,
हारा है।
यीशु ने उसको मारा है,
मारा है।
यीशु ने खून बहाया है,
बहाया है।
यीशु ने हमको बचाया है,
बचाया है।
यीशु ने हमको बचाया है। यीशु है सच्चा मसीहा।
पढ़ के कलाम देख लो, 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 पढ़ के कलाम देख लो।
डरती है बदरूह सारी, यीशु से डरती है हर बीमारी। यीशु से डरती है बदरूह सारी, यीशु से डरती है हर बीमारी। यीशु के प्यारो दुख से नहारो, यीशु को सच्चे मन से पुकारो।
यीशु का वादा सच्चा है,
सच्चा है,
जो भी वो कहता है होता है,
होता है।
यीशु यहोवा रब्बा है, यीशु खुदा का है बेटा,
पढ़ के कलाम देख लो।